पवित्र दिन है, श्रीमती सीता महारानी का आविर्भाव दिवस है और श्रीमती जाह्नवी देवी का आविर्भाव दिवस है और श्री लमधु पंडित का तिरुभाव दिवस है। ये तीनों त्यौहार ऐसे हैं जो साल में केवल एक ही बार आते हैं, सीता महारानी का आविर्भाव और जाह्नवी देवी का आविर्भाव। तो शक्ति तत्व का तिरुभाव नहीं आता, इसलिए साल में केवल एक ही दिन होता है कि हम इन दोनों देवियों को याद करें। और मधु पंडित का तिरुभाव दिवस है, हमारे वैष्णव कैलेंडर में उनका आविर्भाव नहीं आता है। तो तीनों जो महा आत्माएं हैं उनका आज आविर्भाव या तिरुभाव इस प्रकार है कि साल में केवल एक ही बार अवसर मिलता है उनको याद करने का। तो सबसे पहले मधु पंडित के तिरुभाव के अवसर पर हम तिरुभाव भजन गाएंगे, आप लोग मेरे पीछे बोलें, करताल दीजिए करताल। जहाँ आचार्य ठाकुर है वहाँ मधु पंडित ठाकुर बोलेंगे।
जी अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर हिना प्रभु को था गिला मधु पंडित कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनाता रघु नाथ पति कहाँ मोरा भट जुग कहाँ कबीरा गेला गोरा नटरा पसाण कोटी बो मथा अनहने पसेबो निधि कोता गेले पाबो सब संगीरा संगे जिलो बिला पाइया कांदे नरो
मधु पंडित तिरुभावती थी महामहोत्सव की। तो इसमें जो भजन है इसके शब्द इस प्रकार से हैं कि जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, जो प्रेम धन लेकर के आए कहाँ से, भगवान के धाम से। क्यों लाए? प्रचुर करुणा के कारण। हिना प्रभु कोठा गिला मधु पंडित ठाकुर, वैसे प्रभु मधु पंडित ठाकुर कहाँ चले गए। कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ सनातन, कहाँ मेरे स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं, कहाँ रूप गोस्वामी हैं, कहाँ सनातन गोस्वामी हैं, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन और पतितों को पवित्र करने वाले रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ हैं। कहाँ मोरा भट्ट जुग और कहाँ मेरे दोनों भट्ट, दोनों भट्ट गोपाल भट्ट गोस्वामी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहाँ हैं। कहाँ कविराज, कविराज कृष्णदास कविराज कहाँ हैं। एक काले कोठा गेला गोरा नटराज, और एक काले यानी अनायास कहाँ चले गए गौर वर्ण के नर्तकों के राजा कौन है, श्री चैतन्य। पास आने कुटेबो माथा, मैं अपने माथे को पत्थर में फोड़ू, अनले पसीबो या अग्नि में प्रवेश करूं, गौरांग गुणेर निधि कोथा गिले पावो, गुणों के समुद्र गौरांग को किस प्रकार से मैं प्राप्त करूं। शेष सब संगीरा संगे जे कैलो विलास, जितने संगीत थे भगवान के उन्होंने भगवान के संग में विलास किया, शेष संग ना पाया कांदे नरोत्तम दास, उनका संग ना प्राप्त करके नरोत्तम दास रोते हैं। तो मधु पंडित गोस्वामी के विषय में गौड़ी वैष्णव चरितामृत में से कुछ बातें मैं पढ़ के सुनाऊंगा, फिर कुछ अन्यत्र से भी सुनाऊंगा। श्री कृष्ण के प्रपौत्र बजनाभ, श्री कृष्ण के प्रपौत्र बजनाभ, श्री कृष्ण के पुत्र कौन है, प्रद्युम्न, फिर उनके पुत्र अनिरुद्ध यानी कृष्ण के पौत्र, फिर अनिरुद्ध के पुत्र बजनाभ कृष्ण के प्रपौत्र, कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध, कृष्ण के प्रपौत्र बजनाभ। तो श्री कृष्ण के प्रपौत्र बजनाभ ने 5000 वर्ष पूर्व वृंदावन में मूल गोपीनाथ अर्चा विग्रह की स्थापना की। लगभग 500 वर्ष पूर्व परमानंद भट्टाचार्य ने यमुना के बंसी वट तट की भूमि को खोदकर इस विग्रह को खोज निकाला। तो परमानंद भट्टाचार्य को प्राप्त हुए थे ये कौन से अर्चा विग्रह, गोपीनाथ, जिनको बजनाभ ने स्थापित किया था। श्री गदाधर पंडित के शिष्य मधु पंडित गोस्वामी ने ये गोपीनाथ विग्रह का पूजन किया। तो इस कहा जाता है मधु पंडित गोस्वामी प्राण धन है गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे। तो मधु पंडित गोस्वामी के ये जो है प्राण धन है राधा गोपीनाथ। भक्ति रत्नाकर के कथनानुसार श्री गोपीनाथ सर्वथा यमुना दे यमुना के रमणीक बंसीवट तट पर क्रीड़ा मग्न रहते हैं। उनकी अंग कांति प्रत्येक दर्शक का मन हर लेती है। जब गोपीनाथ जी के मनमोहक रूप की मधुरिमा मन में प्रविष्ट होती है तो तुरंत ही संसार की धधकती हुई ज्वाला शांत हो जाती है। इस समय मूल गोपीनाथ अर्चा विग्रह जयपुर राजस्थान में स्थापित हैं। श्रीनिवास नरोत्तम और श्यामानंद ये तीन जीव गोस्वामी के शिक्षा शिष्य हैं। तीन का एक बैच जो जीव गोस्वामी ने छह गोस्वामियों के ग्रंथों का अध्ययन कराया। कौन कौन से हैं, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु। तो जीव गोस्वामी ने फिर तीनों अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि वृंदावन से गोस्वामी ग्रंथों से भरी हुई बैलगाड़ी ले जा करके गौर देश में इनका प्रचार करें, इनका वितरण करें। कैसे वितरण करें, हाथ से लिख करके इन ग्रंथों का वितरण करेंगे। कितना कठिन कार्य है पुस्तक वितरण का कार्य, कितना कठिन है, हाथ से लिखें भी और फिर वितरण भी करें, है ना। तो गोस्वामी ग्रंथों का वितरण करने के लिए बैलगाड़ी से जो है भरी हुई बैलगाड़ी भरी हुई गोस्वामी ग्रंथों से बैलगाड़ी भरी हुई जब ले जा रहे थे तो मधु पंडित ने श्रीनिवास आचार्य को गोपीनाथ की पुष्पमाला देकर आशीर्वाद दिया था। उस समय गोपीनाथ वृंदावन में ही थे और मधु पंडित गोस्वामी उनके पुजारी थे, तो श्रीनिवास आचार्य को फूल माला देकर के आशीर्वाद दिया। तो आगे चल करके जो ये बैलगाड़ी लापता हो गई, सब गोस्वामियों के ग्रंथ लापता हो गए, तो श्रीनिवासाचार्य ने ही पता लगाया था गोस्वामियों के ग्रंथों का। तो ये समझ सकते हैं कि मधुर पंडित गोस्वामी ने गोपीनाथ की जो माला दी थी, तो उसके प्रभाव से ही श्रीनिवासाचार्य गोस्वामी ग्रंथों का पता लगा सके। गोलोक वृंदावन में मधु पंडित गोस्वामी चंपक लता सखी के गण में मंडली सखी के रूप में सेवा करते हैं। चंपक लता अष्ट सखियों में से एक हैं, राधा कृष्ण की जो आठ सखियां हैं उनमें से एक चंपक लता है, और चंपक लता की जो सखियां हैं उनमें से एक मंडली सखी के रूप में सेवा करते हैं। मधु पंडित गोस्वामी का जो स्वरूप है वो मंडली सखी का है। मधु पंडित गोस्वामी की समाधि वृंदावन में राधा गोपीनाथ मंदिर के परिसर के भीतर प्रवेश द्वार की दाईं ओर विराजित है। इनके विषय में कुछ और भी सामग्री मिलती है कि मधु पंडित गोस्वामी नवद्वीप में निवास करते थे और गदाधर पंडित के शिष्य हैं। हर समय इनके श्रीमुख से और गौर भक्तों के मुख से श्री कृष्ण की रस लीलाएं, रसमय लीलाएं सुनकर प्रभु दर्शन के लिए अधीर हो उठे। तो हमेशा गदाधर पंडित के मुख से सुनते थे कृष्ण कथा, और अन्य गौर भक्तों के मुख से कृष्ण कथा सुनते थे, तो प्रभु दर्शन के लिए अधीर हो उठे। कहाँ पर थे ये मधु पंडित गोस्वामी, कहाँ पर थे? नवद्वीप में। हाँ, नवद्वीप में। ध्यान से सुनिए, भगवान की लीला स्थली श्री वृंदावन में आए, सब कुछ छोड़ छाड़ करके आ गए। यहाँ आकर परमानंद भट्टाचार्य के पास केसी घाट पर निवास करने लगे। श्रीपाद परमानंद भट्टाचार्य को रूप सनातन गोस्वामियों का शिक्षा गुरु कहा जाता है, भक्ति शास्त्रों का शिक्षा गुरु परमानंद भट्टाचार्य को कहा जाता है। श्री मधु पंडित गोस्वामी कृष्ण दर्शन के लिए वृंदावन के वन वन में कुंज कुंज में झांकते फिरने लगे। जैसे कहा जाता है कि कृष्ण के वियोग में भक्त पागल हो जाता है, तो ये पागलपन श्री चैतन्य में भी था, तो मधु पंडित गोस्वामी में ये पागलपन आ गया। तो क्या कर रहे हैं, वृंदावन के वन वन में कुंज कुंज में झांक रहे हैं। भूख प्यास की अनुभूति नहीं हो रही है, भूख प्यास भूल गई। एक एक ब्रजवासी से पता पूछते हैं, पागलों की भांति पता पूछते हैं कि श्री कृष्ण कहाँ हैं। एक दिन ब्रह कातर होकर यमुना के किनारे बैठ गए, हाँ कृष्ण, हाँ प्राणनाथ, कहाँ हो, जोर जोर से पुकार कर रोते रोते इन्होंने यमुना में मानो आंसुओं की बाढ़ ही उपस्थित कर दी। इतने आंसू आए, जमुना जी में बाढ़ आ गई, यमुना जी में जोर की बाढ़ आई और करारों पर कटाव हो रहा था। जहां पर ये बैठे थे वहां का तट भी कट रहा था, लेकिन इनको कुछ होश नहीं। अब ये तो चले जाएंगे यमुना जी के अंदर, इन्हें कुछ होश नहीं है, तो यमुना के उसी तट में बैठे जहां का जो तट है वो कट रहा है। जिस स्थान पर मधु पंडित बैठे हुए थे उस करार में दरार पड़ चुकी थी और थोड़ी देर में यमुना जी में वो दरार गिरने वाली थी, किंतु इनको क्या पता। भक्त तो भगवान की चिंता कर रहा था, इधर भक्त वत्सल भक्ति की चिंता में व्याकुल हो गए। अभी ये करार के साथ यमुना के गंभीर जल में गिरा, तो गिरा, भगवान को चिंता हुई कि अब तो गिरने वाला है, तो दर्शन देना ही पड़ेगा। ब्रजेंद्र नंदन ने झट अपनी बंसी संभाली और बंसी वट पर त्रिभंग ललित होकर मधुर तान छेड़ी। भगवान के पास सब उपाय है रक्षा करने के, तो कैसे रक्षा की, कि पीछे की तरफ जो है बंसी बजाई कि पीछे की तरफ भागेगा तो रक्षा हो जाएगी। तो पीछे से जो है बंसी वट पर मधुर तान छेड़ी। तान वही थी रासोत्सव में ब्रज गोपियों को बुलाने के लिए श्री कृष्ण अनंत काल तक ये जो है अभ्यास किया है। मधु पंडित गोस्वामी से सुनते ही चौंके और पीछे को देखा, देखा तो गोपीनाथ ललित त्रिभंग छवि से मुरली बजा रहे हैं। व्याकुल होकर भागे उनकी ओर और जाकर अंक में भर लिया, लपट गए, कृष्ण को लपेट लिया अपने शरीर से। बहुत दिन तक तीव्र विरह करके तीव्र विरह था, कष्ट के आलिंगन कर लिया। भक्तमाल में ये कवित है, जमुना चढ़त काट करत करारे जहां बंसी वट तट डीठ है परोसो अनूप है अंग भरी लिए दौर अजहू लो सिर मोर चाहे भाग भाल साथ गोपीनाथ रूप है। जब श्री गोस्वामी मधु पंडित गोस्वामी ने प्रभु से सर्वदा उसी रूप में अपने पास बने रहने का आग्रह किया कि अब आप मेरे साथ हमेशा इसी रूप में रहिए, तो प्रभु ने कहा मधु मैं तुम्हारे पास सर्वथा साक्षात रूप से रहूंगा, किंतु ये कलिकाल है, सबके पक्ष में ऐसा संभव नहीं है, अतः सबके लिए मूर्ति रूप में दर्शन दूंगा। इतना कहकर श्री भगवान मूर्ति रूप में आविर्भूत हो गए। हरि बोल। श्री मधु पंडित गोस्वामी उन्हें ही आलिंगन पूर्वक निवास स्थान पर लाए और श्री गोपीनाथ नाम से उनकी प्रतिष्ठा कर सेवा करने लगे। श्री मधु पंडित गोस्वामी ने अति सुंदर श्री राधा विग्रह भी गोपीनाथ जी के वाम भाग में विराजित कर दिया। तो राधा गोपीनाथ, पहले गोपीनाथ अकेले थे, लेकिन फिर हो गए राधा गोपीनाथ। खड़दा में विराजमान श्री जाह्नवा देवी ने अपनी एक प्रतिमा निर्माण करके श्री परमेश्वरी दास के हाथ 700 मुद्रा और रत्न अलंकारों सहित वृंदावन भेजी। सुनिए बड़े ध्यान से, तो आज जाह्नवा देवी का भी आविर्भाव दिवस है, तो उनका भी चरित्र इनके साथ जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने राधा गोपीनाथ की स्थापना की वृंदावन में। और जाह्नवा देवी ने खड़दा में उस समय निवास करती थी, नित्यानंद की पत्नी है, तो खड़दा में निवास करती थी, तो वहां से अपनी एक मूर्ति निर्माण करके जाह्नवा देवी ने परमेश्वरी दास के हाथ 700 मुद्रा और रत्न अलंकारों के सहित वृंदावन भेजी। उनकी आज्ञा ये थी कि इस मूर्ति को गोपीनाथ के बाईं तरफ जाकर प्रतिष्ठित करो। अब बाईं तरफ तो राधा रानी पहले से हैं, और जाह्नवा देवी ने अपनी मूर्ति भिजवाई कि गोपीनाथ के बाईं तरफ स्थापित करो। नित्यानंद की स्वरूप शक्ति माता जाह्नवी की आज्ञा का कौन उल्लंघन करे। अब क्या हुआ, सेवक पुजारी लोग हृदय में अति संकित हो उठे, दुविधा में पड़ गए। गोपीनाथ जी ने स्वप्न दिया कि सेवकों को कि श्री जो मूर्ति खंडा से आई है, अनंग मंजरी है, इन्हें मेरे बाएं स्थान में विराजमान करने में कोई दोष की आशंका मत करो। गोपीनाथ जी ने आदेश दिया। अब गोपीनाथ जी स्वयं आदेश दे रहे हैं कि जाह्नवा देवी अनंग मंजरी हैं, तो ये अनंग मंजरी को जो है मेरे बाईं तरफ स्थापित करो, कोई दोष नहीं होगा। गोपीनाथ जी ने स्वयं आदेश दिया। इस आज्ञा को पाकर सेवकों ने बाईं तरफ पहले से विराजित राधा जी को हटाकर गोपीनाथ के दाईं तरफ विराजमान कर दिया और जाह्नवा जी द्वारा भेजी अनंग मंजरी की मूर्ति को बाईं तरफ प्रतिष्ठित कर दिया। अब तो राधा जी ने मान लीला आरंभ कर दी। ना तो श्रृंगार धारण करें, सब फेंक देते, जो भी श्रृंगार करो सब फेंक देंगे, सब सब तोड़ देंगे, फेंक देंगे, कुछ नहीं धारण कर रहे हैं श्रृंगार, ना भोग ग्रहण कर रहे हैं, भोग लगाओ सब फेंक देते हैं सब। स्वप्न में सेवकों ने मानवती राधा के प्रणय को अनुभव किया कि स्वप्न में भी बहुत गुस्सा दिखा रहे हैं राधा रानी है। सब के सब भयभीत हो उठे, और जयपुर के राजा उस समय कौन थे, जयसिंह थे, जो भी हो, जयपुर के राजा श्री वृंदावन के श्री विग्रहों के अनन्य निष्ठावान थे, उनको बुलाया और ब्रजवासी वैष्णवों ने इस समस्या का समाधान करने के लिए सभा बुलाई। सब ने यही निर्णय दिया कि राधा जी को पुनः बाईं तरफ और अनंग मंजरी को दक्षिण तरफ दाईं तरफ कर दो, तो वैसा कर दिया गया। तो राधा जी प्रसन्न हो गई और सब सेवक भी संतुष्ट हो गए और सेवा करने लगे। अब बिल्कुल संतुष्ट है राधा रानी। अनंग मंजरी राधा रानी की बहन ही तो हैं। अपनी बात मनवाने के कुछ दिन बाद करुणामयी राधा जी ने सेवकों को आज्ञा दी, अनंग मंजरी को पुनः बाईं तरफ और मुझे दाईं तरफ विराजमान कर दो। उनकी आज्ञा के बिना किया था ना, इसलिए नाराज हुई। गोपीनाथ जी की आज्ञा से पर्याप्त नहीं है, गोपीनाथ जी की आज्ञा पर्याप्त नहीं है, राधा रानी की आज्ञा लेनी पड़ेगी, तो इसलिए उन्होंने बहुत गुस्सा दिखाया। लेकिन आगे चल करके उन्होंने स्वयं आदेश दिया, अब मेरी आज्ञा है कि अनंग मंजरी को वाम भाग में, मुझे दक्षिण भाग में विराजमान कर दो। ऐसा कर दिया गया, आज तक उसी रूप में सेवा हो रही है, राधा रानी दाईं तरफ, गोपीनाथ जी के बाईं तरफ अनंग मंजरी है। श्रीमान रास रसारंभी बंसी बट तटस्थिता करसिन वर्ण सुनैर गोपीर गोपीनाथा श्रेयस्तु न। तो ये गोपीनाथ अर्चा विग्रह हैं मधु पंडित गोस्वामी के। श्री मधु पंडित गोस्वामी तेरो भाव तिथि महामहोत्सव की। जहन्नम माता के बारे में कुछ बातें हैं, आप सुनिए। नित्यानंद प्रभु की दो पत्नियां हैं, श्री वसुधा देवी और श्री जहन्नवा देवी। भगवान बलदेव की जो नित्य प्रेसियां हैं वारुणी और रेवती, तो उन्हीं के ही अवतार हैं। वारुणी और रेवती के अवतार जो है बलराम जी के अवतार नित्यानंद हैं, और इनकी जो बलराम जी जो पत्नियां हैं वारुणी रेवती, उनके अवतार ये वसुधा और जाह्नवा हैं। पंचतत्वों और श्री चैतन्य महाप्रभु के अनेक नित्य पार्षदों के तेरह भाव के उपरांत गौर पूर्णिमा के दिन खेतुड़ी में एक विशाल संकीर्तन उत्सव का आयोजन किया गया। नरोत्तम दास ठाकुर का ये बहुत बड़ा ये योगदान है। खेतुड़ी उत्सव ये सबसे पहला उत्सव गौर पूर्णिमा का और सबसे बड़ा उत्सव है। गौरांग महाप्रभु के हजारों अनुयायियों जैसे नरोत्तम, श्यामानंद, श्रीनिवास, वृंदावन दास, मुरारी चैतन्य, परमेश्वर, मीन केतन राम, इन सब ने प्रथम खेतुड़ी संकीर्तन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने गौरांग आविर्भाव दिवस गर्जनशील कीर्तन के साथ मनाया और अर्चन विग्रहों के 6 समूह स्थापित किए गए, 6 जोड़ी। जाह्नवा माता ने अनुपम भोज पकाया, स्वयं जाह्नवा माता ने भोजन पकाया वैष्णवों के लिए और स्वयं समस्त वैष्णवों को परोसा। नरोत्तम दास ठाकुर के प्रेम नाम कीर्तन के समय क्या हुआ, श्री चैतन्य, नित्यानंद और सब पार्षद वहां सहसा प्रकट हो गए और सब आह्लादित हो गए। जब कीर्तन हरि वो नरोत्तम दास ठाकुर का जो कीर्तन हुआ उनकी आवाज में, तो वो कीर्तन ऐसा अद्भुत हुआ कि श्री चैतन्य सब जा चुके हैं इस पृथ्वी से लेकिन सहसा भक्तों के बीच में प्रकट हो गए। जाह्नवा माता के स्नेहिल भक्तजन उन्हें माँ जाह्नवा के नाम से पुकारते हैं। उन्होंने संपूर्ण गौर मंडल और ब्रज मंडल की यात्रा की, जहाँ भी वे गईं गौर भक्तों ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी सेवा की, उनका सत्कार किया। नित्यानंद स्वरूपिणी के नाम से प्रख्यात जाह्नवा देवी प्रेम भक्ति से ओतप्रोत थी। अपने प्रचार द्वारा इन्होंने अनेक नास्तिकों और पापियों का उद्धार किया। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर कल्याण कर तलु में जाह्नवा माता के प्रति ये प्रार्थना करते हैं, हे जाह्नवा देवी इस दास पर करुणा कीजिए, अपने दिव्य गुणों की शक्ति द्वारा मेरी कष्टप्रद स्थिति से मुझे उबारिए। मैंने दृढ़तापूर्वक आपके चरण कमल रूपी नौका की शरण ली है, इस भाव सागर को पार करने का निर्णय किया है। आप नित्यानंद की शक्ति हैं, आप श्री कृष्ण भक्ति की गुरु हैं, कृपया इस दास को अपने चरण कमलों का आश्रय प्रदान कीजिए। आपने असंख्य पापियों का उद्धार किया है, कृपया उसी प्रकार मेरा भी उद्धार कीजिए। आज कृपा याचना करते हुए ये तुच्छ पापी आपके चरणों में झुका हुआ है। ये भक्ति विनोद ठाकुर की प्रार्थना, आज के दिन हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए जाह्नवा माता से। तो जाह्नवा देवी ने वृंदावन के गोपीनाथ अर्चा विग्रह में प्रविष्ट होकर इस जगत का त्याग किया। तो वही गोपीनाथ जी के अर्चा विग्रह में जाह्नवा माता क्या हुई, प्रविष्ट हुई, शरीर नहीं छोड़ा। और ब्रज लीला में ये अरंग मंजरी हैं। गौर गुणोदेश दीपिका में लिखा हुआ है, श्री वारुणी रेवत वंश संभवे तस्य प्रिये द्वे वसुधा च जाह्नवी श्री सूर्यदासस्य महात्मनः सुते ककुन्दिनी रूपस्य च सूर्य तेजसः। कि बलदेव जी की जो पत्नियां हैं श्री वारुणी देवी और रेवत वंश में उत्पन्न श्री रेवती देवी, अब श्री नित्यानंद प्रभु की पत्नियां श्री वसुधा और जाह्नवा है। तो रेवत ककुद्मी, ककुद्मी की पुत्री है रेवती, राजा ककुद्मी की पुत्री है रेवती तो रेवती बलदेव जी की पत्नी है, तो ककुद्मी बलदेव जी की कौन लगे, ससुर लगे, ककुद्मी ससुर लगे। तो वही बलदेव जी की ससुर गौर लीला में सूर्यदास पंडित के रूप में प्रकट हुए और उनकी पुत्री जाह्नवा और वसुधा, तो ये दो उनकी पुत्रियां हैं। ककुदनी के अवतार हैं सूर्यदास, ये दोनों सूर्य के समान तेजस्वी महात्मा सूर्यदास की कन्याएं हैं। ये सूर्यदास पहले रेवती के पिता ककुदनी थे, रेवत नाम के एक महाराजा हुए, उनकी पुत्री थी रेवती और उनके योग्य वर्ग की खोज में ब्रह्मा जी के सलाह से वे द्वारका पहुंचे। महाराज रेवत यानी ककुदनी, समझ जी रेवत के पुत्र रेवत या ककुदनी, महाराज ककुदनी और उनकी कन्या रेवती अति विशाल आकार की थी। श्री कृष्ण बलदेव ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया और रेवती को अपने आकार के अनुरूप छोटा कर लिया। बहुत ऊंची थी, सत्ययुग की थी रेवती, है ना, और बलदेव जी द्वापर युग के हैं तो छोटे हैं, तो हल से जो है उन्होंने सिर में हल लगाया और नीचे नीचे करके उनको जो छोटा किया। अति आनंद पूर्वक श्री बलराम और रेवती का विवाह हुआ। रेवत का एक नाम ककुदनी भी है, बलदेव की एक और पत्नी वारुणी भी है। वारुणी और रेवती इस चेतन लीला में श्री नित्यानंद की पत्नियां श्री वसुधा और जाह्नवा हैं। ये दोनों सूर्यदास की पुत्रियां हैं। विवाह अवसर पर वसुधा ने नित्यानंद की सप्रेम सेवा की। नित्यानंद अवधूत थे, सूर्यदास ने उनसे निवेदन किया, प्रभु ये वसुधा भी आप में अनुरक्त है। नित्यानंद एक के साथ दूसरी बहन को भी ब्याह लाए, दोनों उनकी पत्नियां बनी। माता जाह्नवा की अति मनोहारी लीलाएं हैं। जाह्नवा माता ने अपने वर्तमान रहते हुए अपनी एक सुंदर मूर्ति का निर्माण कराया, किंतु सबसे ये कहा कि राधिका जी की मूर्ति है, वही बात यहाँ पर बताई गई है, लेकिन वो राधा रानी की मूर्ति बताई जबकि उनकी अपनी मूर्ति थी। वृंदावन में गोपीनाथ जी को इसे अर्पण करना है। माता जाह्नवा के भावों को कोई नहीं जान सका। श्रीनिवासाचार्य प्रभु गौड़ी भक्तों के साथ उस विग्रह को वृंदावन लाए और अनेक महोत्सव के साथ इस विग्रह को श्री गोपीनाथ के बाएं भाग में विराजमान कर दिया। गोपीनाथ के बाएं भाग में पहले राधा जी का विग्रह विराजमान था, उसे दाएं भाग में स्थापन कर दिया। दर्शन करने वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ। जयपुर के राजा मान सिंह, अच्छा ये मान सिंह थे, जब वृंदावन आए और उन्होंने गोपीनाथ जी के दोनों तरफ श्री राधा जी के विग्रह दर्शन किए तो बड़े चकित हुए। पुजारी से बार बार पूछा, उन्होंने सब वृत्तांत बताया, परंतु उनको संतोष नहीं हुआ। किसको? हाँ, राजा मान सिंह को संतोष नहीं हुआ। जाह्नवा जी ने स्वप्न में जयपुर नरेश से कहा, राजन राधा रानी बार बार अकारण गोपीनाथ जी से मान करती रहती हैं। श्री गोपीनाथ बहुत व्याकुल अधीर हो उठते हैं, अतः मैं ही यहाँ राधा रानी के मान को दूर करने के लिए आकर विराजमान हुई हूँ। तो जाह्नवा माता ने इनको स्वप्न दिया जयपुर के राजा मान सिंह को, क्योंकि उनको बड़ा संदेह हो रहा था कि दो राधा रानी की मूर्तियां कैसे हैं। और भक्तों ने तो सोचा ठीक है दो राधा रानी की मूर्तियां हैं, उन्होंने कहा नहीं दो राधा रानी की मूर्तियां नहीं हो सकती, कुछ रहस्य है। तो जाह्नवा माता ने इनको स्वप्न दिया, क्योंकि रहस्य क्या क्या है कि मैं ही हूँ अनंग मंजरी है, और क्यों यहाँ आई हूँ गोपीनाथ जी के बाईं तरफ। राधा रानी हमेशा मान करती है, गोपीनाथ जी बहुत परेशान हो जाते हैं, तो मैं उनका मान दूर करने के लिए मेरी यही सेवा है, इसलिए मैं आई हूँ। राजा को उस आदेश से संतोष हुआ और उसने इस रहस्य का उद्घाटन किया। सो आज तक गोपीनाथ जी के बाईं तरफ जाह्नवा जी विराजमान हैं। गोपीनाथ जी ने स्वयं ही जाह्नवा जी को इस प्रकार वृंदा बनाकर अपने बाम भाग में विराजमान होने की और राधा रानी के मान प्रशमन करने में सहायता करने की प्रेरणा की थी। माँ जाह्नवा एक बार वृंदावन के लिए पधारी तो रास्ते में बृहद ग्राम पहुंची और वहां कुछ दिन रहने की उन्होंने इच्छा प्रकट की। बृहद ग्राम के लोग बड़े पाखंडी दुराचारी और हिंसक थे, वैष्णव के तो पूरे शत्रु थे। संध्या के समय समस्त वैष्णव श्री जाह्नवा की जब वंदना कर रहे थे, वहां के पाखंडी लोग ये देखकर उनका मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे ये सब मूर्ख हैं, मनुष्य होकर एक नारी को प्रणाम करते हैं, हमारी चंडी देवी को तो ये प्रणाम नहीं करते, इनका चंडी देवी के प्रति घोर अपराध हो रहा है। इतना कहकर चंडी देवी के मंदिर में पहुंचे और उनको बार बार प्रार्थना करने लगे, हे देवी आज हम इन सब वैष्णवों का संहार कर देंगे, यदि हमने आज तक तुम्हारी मन वाणी कर्म से कुछ सेवा की है तो हमारी रक्षा करना। वे सब रात्रि को इन सब की हिंसा करने का संकल्प करके अपने अपने घर चले गए। सोते उन्हें गहरी नींद आ गई। इधर चंडी देवी अत्यंत क्रोधित होकर प्रचंड तलवार अपने हाथ में लेकर उन पाखंडियों को नष्ट करने के लिए निकल पड़ी। सबको सपने में गर्ज गर्ज कर देवी कहने लगी, ओ पाखंडियों आज मैं तुम सबका संहार करूंगी। हरि बोल। तुमने परम आराध्या मेरी स्वामिनी का अपराध किया है, वैष्णवों का अपमान तुमने अहंकार के कारण किया है, तुम नहीं जानते कि वे विप्र पत्नी नहीं है, निताई चांद बलराम की आदि शक्ति ईश्वरी जहनवा है, मेरी पूज्या है, इनका तो नाम लेने से भव सागर से पार व्यक्ति हो जाता है, करुणा मूर्ति जीवों को प्रेम भक्ति वितरण करने के लिए प्रकट हुई हैं, तुम सब इनकी शरण ग्रहण करो वरना आज तुम्हारे मस्तक मैं काट देती हूँ। हरि बोल। सब पाखंडी चौंक उठे और सबके घर में सपना मिला, एक ही समय में सबको सपना आया और सो गए वो, उनको उठना था रात में हत्या करने के लिए, तो वो सो गए और सपना आया, धिक्कार करने लगे अपने को सब पाखंडी। प्रातः होते ही श्री ईश्वरी के चरणों में आकर शरण ली, समस्त वैष्णवों के चरणों में अपने अपराधों की क्षमा याचना की, तो जहनवा माँ तो करुणा की मूर्ति है, वैष्णवगण जीवों के प्रति सदा दयालु होते हैं, तो माँ ईश्वरी ने सबको भय दान दिया, भक्ति संचार कर उन सबका उद्धार किया। दो चार दिन तक बृहद ग्राम में रहकर समस्त ग्रामों को कृष्ण नाम प्रेम में सराबोर कर दिया। निर्जन जंगल में रहने वाले दो डाकुओं ने जब सुना किस प्रकार करुणा मूर्ति माता जहनवा ने सबका उद्धार कर दिया है, तो वे भी इनके शरण में आए और का और दीन होकर अपने उद्धार की प्रार्थना की, तो माता जहनवा ने उन्हें भी प्रेम भक्ति का दान प्रदान किया। हरि बोल। इसी प्रकार वृंदावन को जाते समय रास्ते में जहनवा जी ने एक महान डाकू कुतुबुद्दीन का भी उद्धार किया, अनेक मुसलमानों को लेकर वो इन्हें लूटने के लिए आया, परंतु सारी रात वो डाकू अपने साथियों से इधर उधर भटकता रहा, माता जहनवा तक पहुंच ही नहीं पाया, प्रातःकाल हो गया और सब के सब व्याकुल और भयभीत होते, अंत में जहनवा जी की शरण में आकर वो डाकू अपनी अपना अपराध निवेदन करने लगा। उसने कहा, ईश्वरी मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें, मैं सारी रात आपके चारों तरफ भ्रमण करता रहा हूँ, जहाँ जिधर जाता बड़े बड़े सांप ही मुझे दिखाई देते और मुझे काटने के लिए आते थे, केवल हम लोगों के प्राण नहीं निकले परंतु भय के मारे हम व्याकुल हो गए, फिर आकाश से शब्द हमारे कानों में पड़े। देखो मुसलमान बोल रहा है, जो डाकू था कुतुबुद्दीन वो बोल रहा है कि फिर आकाश से ये शब्द आए कि तुम ईश्वरी के चरणों में जाकर ही निर्भयता प्राप्त कर सकते हो, और कोई तुम्हारी प्राण रक्षा का उपाय नहीं है, हे माता आप हम सब की रक्षा करो, ईश्वरी ने सबको अभय दान दिया और सबके सब कृष्ण गुणगान करने लगे और सदा के लिए कृष्ण भक्त बन गए। हरि बोल। अब जितना समय है हम सीता महारानी की चर्चा करेंगे, सीता महारानी की चर्चा का तो कोई अंत ही नहीं है। तो सुनिए बड़े ध्यान से, ब्रह्म विवर्त पुराण में कुछ रहस्य की बातें हैं और ये कथा भगवान नारायण सुना रहे हैं। कौन से नारायण? जो गंधमादन पर्वत पर तपस्या करते हैं, नर नारायण, नर नारायण नैष्ठिक ब्रह्मचारी भगवान के अवतार हैं, तो वे सुना रहे हैं और किसको सुना रहे हैं? नारद जी को सुना रहे हैं, नारद जी भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी है ना। तो ये जो कथा है ये इतनी पवित्र है कि नारायण ऋषि सुना रहे हैं नारद जी को। तो क्या बता रहे हैं कि दो राजा हुए, धर्मध्वज और कुशध्वज, दोनों भाई थे। इन दोनों राजाओं ने कठिन तपस्या द्वारा भगवती लक्ष्मी की उपासना करके अपने प्रत्येक अभीष्ट मनोरथ को प्राप्त कर लिया। महालक्ष्मी के वरदान से उन्हें पुनः राजा होने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। वे दोनों धनवान और पुत्रवान हुए। कुशध्वज की परम साध्वी भार्या का नाम था मालावती। सुनिए ध्यान से, धर्मध्वज की पुत्री हुई सत्यवती, धर्मध्वज की जो पुत्री हुई सत्यवती, जो कि तुलसी महारानी के नाम से विख्यात हैं, तो सत्यवती, और कुशध्वज की पुत्री हुई वेदवती, जो कि बाद में सीता के रूप में विख्यात हुई है ना। कुशध्वज की परम साध्वी भार्या का नाम था मालावती। मेरे विचार से इसको खोल दें तो कुछ हवा आएगी, क्या विचार है आपका? इसको खोल दिया जाए ना, क्योंकि तो पंखे सब बंद हैं तो हवा कुछ आने चाहिए। हाँ वो दरवाज़ा भी खोलने में खोल सकते हैं, हवा आएगी अभी ठीक है तो उसको नहीं खोलना। हाँ ठीक है उसको बंद रखिए। तो हाँ क्या सुना, मैं क्या बता रहा था, कृष्णदास की हाँ पत्नी का नाम था मालावती। समयानुसार उसके एक कन्या उत्पन्न हुई जो लक्ष्मी का अंश थी, भूमि पर पैर रखते ही ज्ञान से संपन्न हो गई, उसका नाम वेदवती पड़ा। भूमि पर पैर रखते ही ज्ञान से संपन्न हो गई। उस कन्या ने जन्म लेते ही श्रुति के गृह में स्पष्ट रूप से वेद के मंत्रों का उच्चारण किया, वेद मंत्रों का उच्चारण किया उसने। जन्म लेते ही वेद मंत्रों का उच्चारण किया हा? और उठकर खड़ी हो गई। हरि बोल,
हरि बोल।
कोई कन्या जन्म लेते ही उठ के खड़ी हो जाए, वेद मंत्रों का उच्चारण करे, असंभव है ना। इसलिए विद्वान पुरुष उसे वेदवती कहने लगे, उसका नाम पड़ा वेदवती। उत्पन्न होते ही उस कन्या ने स्नान किया, खुद जाके स्नान किया बिना किसी के सहारे। उत्पन्न होते ही जाकर के स्नान किया और तपस्या करने के विचार से वन की ओर चल दी, चली गई। ये सुखदेव गोस्वामी है जन्म लेते ही चले गए। भगवान नारायण के चिंतन में तत्पर रहने वाली उस देवी को सभी ने रोका, बेटी कहाँ जा रही हो, पुत्री कहाँ जा रही हो, परंतु उसने किसी की भी नहीं सुनी। वो तपस्विनी कन्या एक मनमंत्र तक पुष्कर में तपस्या करती रही। एक मनमंत्र कितना होता है, 30 करोड़ साल का, 30 करोड़ साल का एक मनमंत्र। 71 बार चारों युग बीतते हैं, 71 बार चारों युग बीतते हैं और चारों युग मिलकर के 43,20,000 साल होता है। तो 43,20,000 में 71 से गुणा करें तो लगभग 30 करोड़ साल होता है। तो 30 करोड़ साल तक उसने तपस्या की, कहाँ, पुष्कर में। उसका तब बहुत कठिन था तो भी लीला पूर्वक चलता रहा, हाँ, और उसका शरीर हृष्ट पुष्ट बना रहा, यह आश्चर्य। उसमें दुर्बलता नहीं आई, नव यौवन से संपन्न बनी रही। एक दिन सहसा उसे स्पष्ट आकाशवाणी सुनाई दी, सुंदरी दूसरे जन्म में भगवान श्री हरि तुम्हारे पति होंगे। कि अगले जन्म में भगवान श्री हरि तुम्हारे पति होंगे, हाँ, तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि नहीं है, कि नहीं है, है? हाँ? लेकिन वो हाँ प्रसन्न नहीं हुई कि दूसरे जन्म में क्यों, इसलिए प्रसन्न नहीं हुई। आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा आदि देवता भी बड़ी कठिनता से जिनकी उपासना कर पाते हैं उन्हें परम प्रभु को स्वामी बनाने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। लेकिन क्या कहा आकाशवाणी ने, अगले जन्म में। तो उसने क्या सोचा, ये स्थान ठीक नहीं है, इतनी तपस्या करने के बाद भी जो है हाँ मुझे पूरा फल नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए स्थान को छोड़ दिया, ये ठीक नहीं, तपस्या का ये स्थान ठीक नहीं है। आकाशवाणी सुनने के पश्चात रुष्ट होकर वो कन्या गंधमादन पर्वत पर गई। इस स्थान पर कुछ जल्दी फल प्राप्त होगा, गंधमादन पर्वत और पवित्र है, बहुत पवित्र है हाँ, क्योंकि वहाँ पर नर नारायण तपस्या करते हैं और वहाँ पहले से भी अधिक कठोर तप करने लगी। वहाँ चिरकाल तक तप करके विश्वस्त होकर वहीं रहने लगी। एक दिन वहाँ उसे अपने सामने दुर्निवार रावण दिखाई दिया। दुर्निवार का मतलब है जिसका निवारण करना मुश्किल है, वो रावण। वेदवती ने अति धर्म के अनुसार, अतिथि धर्म के अनुसार पाद्य परम स्वादिष्ट फल और शीतल जल देकर उसका सत्कार किया। उसे क्या पता कि यह दुष्ट किस इरादे से आया है, अतिथि सत्कार तो ये वेदों का आदेश है अतिथि सत्कार करने, तो कोई अतिथि आया है तो उसने स्वादिष्ट फल और शीतल जल देकर उसका सत्कार किया। रावण बड़ा पापी था। फल खाने के पश्चात वह वेदवती के समीप जा बैठा और पूछने लगा, कल्याणी तुम कौन हो और क्यों यहाँ ठहरी हो। वो देवी परम सुंदरी थी और साध्वी कन्या के मुख पर मंद मुस्कान की छटा छाई रहती थी। उसे देखकर दुराचारी रावण का हृदय विकार से संतप्त हो गया। वो वेदवती को हाथ से खींचकर उसका श्रृंगार करने को तैयार हो गया। रावण की इस कुचेष्टा को देखकर उस साध्वी का मन क्रोध से भर गया। उसने रावण को अपने तपोबल से इस प्रकार स्तंभित कर दिया कि वो जड़वत होकर हाथों पैरों से निश्चेष्ट हो गया। अब हिल नहीं सकता। क्या हो गया? स्तंभित हो गया। कुछ भी कहने करने की क्षमता उसमें नहीं रही। अब बोल भी नहीं सकता। रावण की बोलने की शक्ति भी खत्म हो गई और हिलने की शक्ति भी समाप्त हो गई। ऐसी स्थिति में उसने मन ही मन उस देवी के पास जाकर उसका मानस स्तवन किया। अपने मन से ही प्रार्थना की रावण ने, क्षमा याचना की, मन से प्रार्थना की। तो शक्ति की उपासना विफल नहीं होती, इसे सिद्ध करने के विचार से देवी वेदवती रावण पर संतुष्ट हो गई और परलोक में उसकी स्तुति का फल देना उन्होंने स्वीकार कर लिया। साथ ही उसे यह साप दिया, दुरात्मा तुम मेरे लिए ही अपने बंधु बांधवों के साथ काल का ग्रास बनेगा, क्योंकि तूने काम भाव से मुझे स्पर्श किया है, अतः मैं शरीर को त्याग रही हूँ, तू देख ले। मैं अपना शरीर त्याग रही हूँ और मैं ही अब तेरी मृत्यु का और तेरे पूरे कुटुंब की विनाश का कारण बनूंगी। देवी वेदवती ने इस प्रकार कहकर वहीं योग द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। अपने शरीर से ही अग्नि प्रकट कर ली। अग्नि बाहर से जलाने की आवश्यकता नहीं। तब रावण ने उसका मृत शरीर गंगा जी में डाल दिया और मन में इस प्रकार चिंता करते हुए घर की ओर चला। हाय, मैंने कैसी अद्भुत घटना देखी, ये मैंने क्या कर डाला। इस प्रकार विचार कर अपने कुकृत्य और उस देवी के देह त्याग को याद करके रावण बहुत विषाद करने लगा। वो देवी वेदवती दूसरे जन्म में जनक की कन्या हुई और उस देवी का नाम सीता पड़ा, जिसके कारण रावण को मृत्यु का मुख देखना पड़ा। वेदवती बड़ी तपस्विनी थी। पूर्व जन्म की तपस्या के प्रभाव से स्वयं भगवान श्री राम उसके पति हुए। ये राम साक्षात परिपूर्णतम श्री हरि हैं। देवी वेदवती ने घोर तपस्या के द्वारा आराधना करके इन जगदीश्वर को पति रूप में प्राप्त किया था। वे साक्षात लक्ष्मी हैं। सीता रूप से विराजमान उस सुंदरी देवी ने बहुत दिनों तक श्री राम के साथ सुख भोगा। उसे पूर्व जन्म की बातें स्मरण थी, फिर भी पूर्व समय में तपस्या में जो कष्ट हुआ उस पर उसने ध्यान नहीं दिया। वर्तमान सुख के सामने उसने संपूर्ण पहले के क्लेशों का त्याग कर दिया। भगवान के साथ जब मिलन हुआ तो जितना भी कष्ट हुआ उसका उसने सब भुला दिया। श्री राम परम गुणी, समस्त लक्षणों से संपन्न, रसिक, शांत स्वभाव, अत्यंत कमनी, स्त्रियों के लिए साक्षात कामदेव के समान सुंदर और श्रेष्ठतम देवता थे। वेदवती ने ऐसे स्वामी को प्राप्त किया। कुछ काल के पश्चात श्री राम पिता के सत्य की रक्षा के लिए वन में गए। वे सीता और लक्ष्मण के साथ समुद्र के समीप ठहरे थे। वहां ब्राह्मण रूपधारी अग्नि से उनकी भेंट हुई। सुनिए ध्यान से। ब्राह्मण रूप में अग्निदेव आए श्री राम के पास। श्री राम को दुखी देखकर ब्राह्मण रूपधारी अग्नि का मन संतप्त हो उठा। तब सर्वथा सत्यवादी उन अग्निदेव ने सत्य प्रेमी श्री राम से ये सत्य वचन कहे। ब्राह्मण रूप में अग्नि ने कहा, भगवान मेरी कुछ प्रार्थना सुनिए। श्री राम, ये सीता के हरण का समय उपस्थित है। ये मेरी माता हैं, इन्हें मेरे संरक्षण में रखकर आप छायामयी सीता को अपने साथ रखिए, फिर अग्नि परीक्षा के समय इन्हें मैं आपको लौटा दूंगा। परीक्षा लीला भी हो जाएगी। इसी कार्य के लिए मुझे देवताओं ने यहाँ भेजा है। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, साक्षात अग्नि हूँ। किसने कहा? अग्नि देवता ने कहा कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, साक्षात अग्नि हूँ, तो आप मेरे संरक्षण में सीता माता को रख दीजिए। और बाद में जब अग्नि परीक्षा का अवसर आएगा तो ये जो छाया सीता अग्नि में प्रवेश करेंगी और मैं असली सीता आपको भेंट कर दूंगा। श्री राम ने अग्नि की बात सुनकर लक्ष्मण को बताए बिना ही व्यथित हृदय से अग्नि के प्रस्ताव को मान लिया। तो लक्ष्मण जी उस समय नहीं थे वहां पर, तो लक्ष्मण जी को यह रहस्य का पता नहीं चला। हे नारद, कौन कह रहे हैं? नारायण ऋषि कह रहे हैं। हे नारद, उन्होंने सीता को अग्नि के हाथों सौंप दिया। तब अग्नि ने योग बल से माया सीता प्रकट की, उसके रूप गुण साक्षात सीता के समान ही थे। अग्निदेव ने उसे राम को दे दिया। माया सीता को साथ ले वे आगे बढ़े। इस गुप्त रहस्य को प्रकट करने के लिए श्री राम ने उसे मना कर दिया। किसको मना कर दिया? माया सीता को मना कर दिया, इस गुप्त रहस्य को प्रकट नहीं करना। यहाँ तक लक्ष्मण भी इस रहस्य को नहीं जान सके, फिर दूसरे के तो बात ही क्या है। अब हम लोग जान रहे हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। हरि बोल। इसी बीच श्री राम ने एक सुवर्णमय मृग देखा। सीता ने उस मृग को लाने के लिए श्री राम से अनुरोध किया। श्री राम उस वन में जानकी की रक्षा के लिए लक्ष्मण को नियुक्त करके स्वयं मृग को मारने के लिए चले। उन्होंने बाण से उसे मार गिराया। मरते समय उस माया मृग के मुख से हाँ लक्ष्मण ये शब्द निकला। वो भी बड़ा चालाक था, मरते मरते भी उसने रावण का काम किया कि हाँ लक्ष्मण, राम की आवाज़ में चिल्लाया हाँ लक्ष्मण, तो इससे क्या होगा, सीता जी व्याकुल हो जाएंगी और लक्ष्मण को भेजेंगी राम संकट में है ना। तो उसने राम के आवाज़ में ये शब्द निकाला हाँ लक्ष्मण, फिर सामने श्री राम को देखकर उनका स्मरण करते हुए सहसा प्राण त्याग दिए और मन के अंदर राम का स्मरण किया कि मुझे तो इनके धाम जाना है। लेकिन आवाज़ दी लक्ष्मण राम की आवाज़ में, लेकिन मन में राम का स्मरण किया और मृग शरीर त्याग कर दिव्य देह से संपन्न हो गया और रत्न निर्मित दिव्य विमान पर सवार होकर वैकुंठ धाम को चला गया। हरि बोल। ये मारीच पूर्व जन्म में वैकुंठ धाम के द्वार पर वहाँ के द्वारपाल जय और विजय का किंकर था और वहीं रहता था। ये बड़ा बलवान था, इसका नाम था जित, जित नाम था। तो जब चार कुमारों ने साथ दिया इन दोनों को कि असुर बने, तीन जन्मों के लिए असुर बने, तो उनका जो सेवक है उसको भी साथ लगा जित, ये जित नाम का सेवक है, जय विजय और जित, तो तीनों जो है तीन जन्मों के असुर है ना। तो रावण कुंभकर्ण जय विजय जब रावण कुंभकर्ण बने तो उनका ये जो है मामा या जो भी हो ये जो है मारीच, हालांकि था तो सेवक ही, तो जित नाम का तो जय विजय से पहले ही चला गया भगवान के धाम में। जय विजय तो रावण कुंभकर्ण है तो वो तो बाद में मारे जाएंगे और फिर तीसरे जन्म भी लेंगे, लेकिन ये चला गया वैकुंठ चला गया। सनक आदिकों के साप से जय विजय के साथ वो भी राक्षस योनि में आ गया था। उस दिन उसका उद्धार हो गया और वह उन द्वारपालों से पहले ही वैकुंठ के द्वार पर पहुंच गया। तब हाँ लक्ष्मण इन कष्ट भरे शब्दों को सुनकर सीता ने लक्ष्मण को राम के पास जाने के लिए प्रेरित किया। लक्ष्मण के चले जाने पर रावण सीता का अपहरण कर खेल ही खेल में लंका की ओर चल दिया। उधर लक्ष्मण को वन में देखकर श्री राम विषाद में डूब गए। वे उसी क्षण अपने आश्रम पर गए और सीता को वहां ना देख विलाप करने लगे। फिर सीता को खोजते हुए वे बारंबार वन में चक्कर लगाने लगे। कुछ समय बाद गोदावरी नदी के तट पर उन्हें जटायु द्वारा सीता का समाचार मिला। तब बानरों को अपना सहायक बनाकर उन्होंने समुद्र में पुल बांधा। उसके द्वारा लंका में पहुंचकर श्री राम ने अपने बाण से बंधु बांधवों सहित रावण का वध कर डाला। तत्पश्चात उन्होंने सीता की अग्नि परीक्षा कराई। अग्निदेव ने उसी क्षण वास्तविक सीता को श्री राम के सामने उपस्थित कर दिया। तब छाया सीता ने अत्यंत नम्र होकर अग्निदेव और श्री राम दोनों से कहा महानुभावो अब मैं क्या करूंगी सो बताने की कृपा कीजिए। तब श्री राम और अग्निदेव बोले देवी तुम तप करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में चली जाओ, वहीं रहकर तपस्या करना, इसके फल स्वरूप तुम्हें स्वर्ग लक्ष्मी बनने का सुअवसर प्राप्त होगा। श्री राम और अग्नि के वचन सुनकर छाया सीता ने पुष्कर क्षेत्र में जाकर तप आरंभ कर दिया। उसकी कठिन तपस्या बहुत लंबे काल तक चलती रही। इसके बाद उसे स्वर्ग लक्ष्मी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। समयानुसार वही छाया सीता राजा द्रुपद के यहाँ यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई। उसका नाम द्रौपदी पड़ा और पांचों पांडव उसके पति हुए। इस प्रकार सतयुग में वही कल्याणी वेदवती कुशध्वज की कन्या हुई, त्रेता युग में छाया रूप से सीता बनकर श्री राम की सहचरी, और द्वापर में द्रुपद कुमारी द्रौपदी हुई, अतएव इसे त्रिहायणी कहा गया है। तीनों युगों में ये विद्यमान रही। तो नारद जी ने पूछा किससे, नारायण मुनि, नारायण मुनि से पूछा, संदेहों के निराकरण करने में परम कुशल मुनिवर, द्रौपदी के 5 पति कैसे हुए, मेरे मन की शंका मिटाने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते, नारद, जब लंका में वास्तविक सीता श्री राम के पास विराजमान हो गई, तब रूप और यौवन से शोभा पाने वाली छाया सीता की चिंता का पार ना रहा। वो श्री राम और अग्निदेव की आज्ञानुसार शंकर जी की उपासना में तत्पर हो गई। पति प्राप्त करने के लिए व्यग्र होकर वो बार बार यही प्रार्थना कर रही थी कि हे त्रिलोचन, मुझे पति प्रदान कीजिए। यही शब्द उसके मुंह से 5 बार निकले। शंकर जी परम रसिक हैं, छाया सीता की प्रार्थना सुनकर वे मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें 5 पति मिलेंगे। नारद, इस प्रकार त्रेता की जो छाया सीता थी वही द्वापर में द्रौपदी बनी और 5 पांडव उसके पति हुए। ये सब जो बीच की बातें थी सुना चुका। श्री राम ने लंका में मनोहारिणी सीता को पा जाने के पश्चात वहां का राज्य विभीषण को सौंप दिया और वे स्वयं अयोध्या पधारे। अयोध्या भारतवर्ष में है। 11,000 वर्षों तक श्री राम ने वहां राज्य किया। तत्पश्चात वे समस्त पूर्ववासियों सहित वैकुंठ धाम को पधारे। लक्ष्मी के अंश से प्रादुर्भूत जो वेदवती थी वो लक्ष्मी के विग्रह में विलीन हो गई। इस प्रकार का पवित्र आख्यान मैंने कह सुनाया। ये पवित्र कथा के प्रभाव से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। चूंकि आज उपवास का दिन है, 10:30 बजे अभिषेक होगा, तो हमारे पास कुछ और समय है, तो हम सुनेंगे कि जैमिनी अश्वमेध पर्व में बहुत सुंदर कथा है सीता की, और विशेष रूप से सीता के वनवास की, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। ये कथा जैमिनी ऋषि सुना रहे हैं, और किसको सुना रहे हैं, जन्मेजय को। जन्मेजय कौन है, परीक्षित महाराज के पुत्र हैं। जन्मेजय परीक्षित महाराज के पुत्र हैं। तो जन्मेजय को जैमिनी मुनि सुना रहे हैं। जैमिनी मुनि कौन है, व्यास देव के शिष्य है ना। तो जैमिनी जी कहते हैं, हे जन्मेजय, श्री राम को राज्य करते 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु तब तक उन्हें सीता जी के गर्भ से किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो इस बात को समझना चाहिए कि सीता जी से पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। 10,000 साल तक श्री राम सीता के साथ रहे, राज्य करते रहे, है ना। और क्यों पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया श्री राम ने। 10 वर्ष 1,000 राज्यम चक्रे स राघव प्रजाम न लेभे सीतायाम पालयन पूर्वज स्थिति। तब बहुत काल व्यतीत होने के पश्चात वैष्णव नक्षत्र श्रवण का विष्णु देवता का 4th चरण बीत रहा था, और माता को देशांतर भेज देने वाले चर लग्न की प्रवृत्ति हुई। ऐसे समय में सीता जी ने गर्भ धारण किया। तत्पश्चात श्री राम 4 महीने तक अपनी पत्नी के साथ आनंद पूर्वक रहे। तो गर्भवास के 4 महीने तक सीता जी राम के साथ रहे। चरे लग्ने प्रवृत्ते च मातुर देशांतर प्रदे तथा स चतुरो मासान रे मे पत्न्या सहेश्वरः। जब 5वां महीना आया, तब एक दिन श्री राम ने स्वप्न में देखा, सुनने सब लोग ध्यान से, श्री राम ने स्वप्न में देखा, क्या देखा, कि लक्ष्मण ने सीता को गंगा तट पर छोड़ दिया है और वो अनाथ की भांति विलाप कर रही हैं। ऐसा स्वप्न देखकर श्री राम बड़े विस्मय में पड़ गए और प्रातःकाल उठकर वशिष्ठ जी से बोले। श्री राम ने कहा, ब्रह्मन, मैंने स्वप्न में सीता को गंगा तट पर विलाप करते देखा है, अतः उसके गर्भ के विघ्न की शांति के लिए आप पुंसवन कर्म करने के लिए आज्ञा दीजिए। श्री राम के ऐसे वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ बोले। वशिष्ठ जी ने कहा, पुंसवन संस्कार शुक्ल पक्ष में करना चाहिए, ये कृष्ण पक्ष बीत जाए और पंचमी तिथि में पुष्य नक्षत्र और रविवार का योग होगा, तब पुंसवन करना उचित होगा। श्री राम, जब तक इस मुहूर्त का दिन आता है तब तक आप ब्राह्मणों को दान मान से संतुष्ट कीजिए। महर्षि वशिष्ठ के वचन को सुनकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई सीता का पुंसवन संस्कार पंचमी तिथि में होगा, तब तक तुम महाराज जनक को मुनियों सहित विश्वामित्र जी को यहाँ बुला लाओ। महाराज जनक कौन है? श्री राम के ससुर हैं। कहाँ पर हैं? मिथिला में। तो लक्ष्मण जी को आगे दे रहे हैं कि मिथिला से जनक जी को ले आओ और विश्वामित्र जी को लाओ मुनियों सहित। श्री राम की आज्ञा प्राप्त होने पर लक्ष्मण जी उनके चरणों में प्रणाम करके चले और श्री राम ने बहुत बड़ा यज्ञ मंडप बनवाया पुंसवन के लिए, उसका वर्णन काफी विस्तृत है। लक्ष्मण शीघ्र ही विश्वामित्र जी और महाराज जनक को बुलाकर लाए और श्री राम के चरणों में प्रणाम करके बोले। लक्ष्मण ने कहा, हे श्री राम, महातपस्वी विश्वामित्र और महाराज जनक आ गए हैं, अब इन दोनों अतिथियों का सत्कार कीजिए। लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम ने मुनि विश्वामित्र और राजा जनक को प्रणाम किया और अर्घ्य प्रदान करके उनकी पूजा की। जब पुंसवन का मुहूर्त उपस्थित हुआ तब वशिष्ठ जी श्री राम से बोले, राम अब आप सीता सहित स्नान कीजिए और माताओं भाइयों के साथ मंडप में चलिए। तब श्री राम सीता सहित भली भांति स्नान करके शुद्ध हुए और मंडप में पधारे। वहाँ कुशल ब्राह्मणों की जो है उपस्थिति, बहुत कर्मकांड में कुशल ब्राह्मण थे। तत्पश्चात वशिष्ठ जी ने श्री राम और सीता को उस चौकोर चौकी पर बिठाया और स्वयं उन्होंने चरु सहित तिल और घी की आहुतियों से हवन किया। फिर जल से सीता जी के केशों का अभिषेक करके उन पर वह रक्षा सूत्र डाल दिया। फिर कमलगट्टों की माला और गुलर के फलों से बनी माला को उन्हीं केशों पर रख दिया। वशिष्ठ जी द्वारा डाली गई उस माला को धारण करके जानकी जी की अत्यंत शोभा हो रही थी। वीणा बजाने में निपुण भरत जी सीता जी के समीप वीणा बजाते हुए मानव गर्भस्थ बालकों को गीत की शिक्षा दे रहे हैं। इस प्रकार सारी क्रियाओं के संपन्न हो जाने के बाद श्री राम ने मुनीश्वरों को खीर शक्कर और घी से बने पदार्थों का भोजन करा कर संतुष्ट किया और ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में बहुत से वस्त्र, सोने के बने हुए आभूषण, रथ और घोड़े प्रदान किए। तब श्री जनक ने भी श्री राम को निष्कंटक राज्य प्रदान किया और स्वयं विश्वामित्र जी को आगे करके वनवास के लिए चल दिए। तो महाराज जनक ने श्री राम को मिथिला का भी राज्य सौंप दिया और वन को चले गए। इसका मतलब है सीता जी का जब वनवास हुआ तो जनक महाराज उस समय नहीं है। अयोध्यापुरी में एक दिन रात के समय जब श्री राम सीता जी के साथ शयन कर रहे थे उस समय वे हर्षित होकर सीता जी से बोले, अयोध्यायाम दासरथि शयाना किल सीतया एकदा रात्रि समये हृष्टा सीताम वचो ब्रवीत। श्री राम ने कहा, देवी इस समय तुम्हारे मन में कैसी अभिलाषा है, तुम्हें किस वस्तु की इच्छा है उसे बताओ। ये बात सुनकर सीता जी अपने पति श्री राम से कहने लगी, हे प्राणनाथ, यों तो आपकी कृपा से मेरी सभी कामनाएं सदा परिपूर्ण होती रहती हैं, परंतु इस समय जहाँ ऋषि पत्नियां और मृग चर्म को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले ऋषि निवास करते हैं, उस गंगा तट पर जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा हो रही है। ये सुनकर श्री राम हंस पड़े, बोले, सीते ये क्या बात है, क्या 14 वर्ष तक दंडकारण्य में निवास करने पर भी वनवास से तुम्हारी तृप्ति नहीं हुई, परंतु आज गर्भकाल में जो तुम्हारी ये पहली अभिलाषा है वो निष्फल कैसे हो सकती है। अतः सीते प्रातःकाल गंगा तट के लिए तुम्हारी यात्रा होगी। सीता जी से ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री राम आनंद पूर्वक नींद लेने लगे। प्रातर्भागीरथी तेरे गमनम तेस्तु जानकी इति तस्य प्रतिश्रुत्य सुस्वाप सुसुखम ससुखम प्रभु। आधी रात बीतने पर रात के समय नगर में पहरा देने वाले गुप्तचर एकांत में श्री राम के पास आकर अलग अलग अपनी बातें सुनाने लगे। भगवान हमेशा गुप्तचर भेजते थे अयोध्या में, किसी को कोई कष्ट तो नहीं है, संकोच के कारण मेरे पास नहीं आ रहे हैं, शिकायत नहीं कर रहे हैं, तो पता लगाओ, तो घर घर में जा करके छिप करके आवाज़ें सुनो, घर के अंदर कोई अपनी कुछ दुख की बात उन्हें सुना रहा है। तो गुप्तचर रोज आते थे और राम को समाचार देते थे कि वे किस घर में गए और उन्होंने क्या बातें सुनी। गुप्तचर कहने लगे, राजन सर्वत्र जनता आपकी कीर्ति का गान कर रही है। रामम रहा समागम में वाक्य मुह चू पृथक पृथंग तब कीर्ति प्रतापश्चा सर्वतो वर्ण तेजन। तब श्री राम ने गुप्तचरों को अत्यंत जोर देकर पूछा, गुप्तचर आजकल मेरे नगर वासियों की स्थिति कैसी है? रात में भ्रमण करते समय तूने मेरे अथवा मेरी भार्या और भाइयों के संबंध में जो कुछ भी अच्छी या बुरी चर्चा सुनी हो उसे ठीक ठीक बता, मेरी ओर से दंड का भय मत कर। श्री राम कह रहे जो कुछ भी सुना है वही बताओ, मेरी ओर से दंड का भय मत करो कि मैं तुम्हें दंड दूंगा। तब गुप्तचर हंसते हुए श्री राम से कहने लगा। गुप्तचर बोला, श्री राम पाप तो आपके दर्शन से ही जलकर भस्म हो जाते हैं, फिर आपके लिए भी पाप की चर्चा तो मेरी समझ से विपरीत ही है। श्री राम मैं बहुत से पापपूर्ण स्थानों में घूमता रहता हूँ, परंतु भरत के भाई आपका दर्शन करके मैं उन संपूर्ण पापों से छुटकारा पा जाता हूँ। तथापि सारे संसार को रोक रखना बड़ा कठिन है, इसमें लोग कुछ ना कुछ दोष निकालते ही हैं। अर्धरात्रि के समय भ्रमण करते हुए मैंने एक बड़ी विचित्र बात देखी है। इस नगरी में किसी धोबी की भारिया घर का त्याग करके चली गई और वो अपने पिता के घर पहुंचकर चार दिन तक ठहर गई। तब उस धोबन के पिता ने मन में विचार किया कि मैंने ये क्या कर डाला, क्योंकि कन्या का पिता के घर रहना स्मृति शास्त्र के विरुद्ध है, इसलिए इस कन्या को मैं इसके पति के पास पहुंचा दूंगा, क्योंकि जिस तरह कपड़े में लगी हुई मैल को मैं अपने हाथों से धोकर स्वच्छ कर देता हूं, उस प्रकार इस कन्या के मेरे घर में रह जाने से मुझे जो कालिमा लगेगी उसका मैं शोधन नहीं कर सकूंगा। ऐसा कहकर वो धोबी अपने सभी जाति भाइयों के साथ अपने जामाता के पास जाकर अपनी कन्या उसे सौंपने लगा। तब वो जामाता धोबी क्रोध के कारण अपने गल फड़ों को चाटता हुआ हाथ उठाकर कहने लगा, क्या आप लोग समझते हैं कि मैं भी श्री राम के ही समान हूँ जिन्होंने राक्षसों के घर में रही सीता को पुनः लाकर रख लिया है? जामाता हस्ते मध्यम में रामोहमति वो मति राक्षसानाम गृहे सीताम वसंतीम आज हार यह। श्री राम वो धोबी बारंबार क्रोधपूर्वक इतनी ही बात दोहराता रहा, फिर वो बोला, समर्थ राजा श्री राम ने यदि ऐसा कर्म कर लिया तो करें, किंतु मैं ऐसा नहीं करूँगा। वो धोबी तो अवश्य ऐसी बात कह रहा था, परंतु अन्य कोई मनुष्य अब तक ऐसी बात कहने में समर्थ नहीं हुआ है। उस समय धोबी की बात पर विचार करके मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि सत्य ही तो कह रहा है, क्योंकि कहां श्री राम और कहां ये नीच धोबी। वो कहता मैं राम नहीं हूं, तो वो दूसरे भाव से कह रहा है, लेकिन गुप्तचर ने दूसरे भाव से इसका अर्थ निकाला कि वो नीच है, तो ये नीच है तो कहां श्री राम और कहां ये नीच धोबी है, तो इन दोनों की क्या समानता है? जिन्होंने गंगा तट के द्वीपों में बहुत से यज्ञ स्तंभ स्थापित किए हैं, अपने धर्म में तत्पर पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हैं, जिन्होंने रावण पर विजय पाई और जगत के आश्रयदाता हैं, वे श्री राम संसार में किसके समान हो सकते हैं? कौन उनकी समानता कर सकता है? ये मूर्ख धोबी केवल लोकाचारों में फंसा हुआ है, गुणों की इसका ध्यान नहीं है, इसी से सर्वगुण संपन्न उन राम को नहीं समझ रहा है। महाराज राम अपने मन में यूं विचार कर मैं आपके पास आया हूं। मूढ़ो न वेत्ति तम रामम गुणिनम रजको हेम मनसा चिंतयत्वेवम राम त्वाम अहम आगमम। तब श्री राम शीघ्र ही उस दूत को विदा करके स्वयं इस प्रकार चिंता करने लगे। यद्यपि अग्नि परीक्षा द्वारा जानकी शुद्ध प्रमाणित हो चुकी है, तथापि ये संसार में उसकी निंदा हो रही है, इसलिए अब मैं उसका परित्याग कर दूं अथवा नहीं, इस प्रकार वे बहुत देर तक सीता के विषय में विचार करते रहे। ये बहुत गहरी बात है, श्री राम जो इस प्रकार से विचार कर रहे हैं ये बहुत गहरी बात है ना, जितनी गहराई में जाएं उतनी और गहराई मिलती है। श्री राम विचार कर रहे हैं, दूतम तम तो विसृज्यासु चिंतयामासना गवः शुद्धापि जानकी वहनो लोकेस्मिन् परिगर्ह्यते तस्मात् जेयं नो वेति चिरं दध्यो स जानकी। अब श्री राम क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं कि धोबी ने जो इस प्रकार से कलंक लगाया तो विशेष रूप से उसने श्री राम को दोष लगाया कि स्त्री लोभी हैं, श्री राम स्त्री लोभी हैं, तो ये बहुत कलंक की बात है ना कि श्री राम स्त्री लोभी हैं, तो स्त्री के लोभ के कारण उन्होंने सीता को स्वीकार कर लिया है ना। तो ये जो कलंक है ये समाज में बहुत गलत प्रभाव पैदा करेगा कि राजा अगर स्त्री के लोभी हैं है? तो प्रजा भी स्त्री का लोभ करेगी, है ना। तो श्री राम ये दिखाने के लिए कि स्त्री के लोभी नहीं है, है? उन्होंने सीता का त्याग किया, है ना। तो ये उनका जो त्याग है ये लोक शिक्षा के लिए है कि राजा क्या होता है, राजर्षि होता है, राजर्षि। तो वे तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, सीता के साथ हैं तो भी पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। तो उन्होंने ये इस दिखाने ये बात दिखाने के लिए किया कि प्रजा को शिक्षा प्राप्त हो कि गृहस्थ जीवन में भी ये गृहस्थ जीवन ये इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला है, तपस्या करने के लिए मिला है, हैं। तो श्री राम जो है विचार कर रहे हैं, श्री राम सोचने लगे जैसे श्रोत्रिय ब्राह्मण आचार की मुख्य पद्धति को नहीं छोड़ सकता उसी तरह मैं सीता का परित्याग कैसे कर दूंगा। जैसे ब्राह्मण वेद संहिता को नहीं छोड़ता है उसी प्रकार से मैं सीता का त्याग कैसे करूं, अथवा जैसे कलयुग में विप्रगण प्राय वेद वाणी का त्याग कर देते हैं उसी प्रकार मैं भी सीता का परित्याग कर दूं। वे इसी उधर मन में पड़े थे कि प्रातःकाल हो गया। श्री राम अपने मन में सीता के परित्याग का ही निश्चय करके भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न को बुलवाने का विचार करने लगे। इसी बीच में श्री राम की सेवा करने के लिए भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न आकर स्वयं उपस्थित हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा श्री राम दुखी हैं और विषाद मग्न बैठे हैं। तब आपस में कहने लगे हम लोग शीघ्र ही सेवा में उपस्थित नहीं हुए इसलिए या हम लोगों को दान रहित देकर कि हमने बिना दान किए यहाँ पर आ गए इस कारण से, अथवा हम लोगों ने प्रातःकाल उत्तम ब्राह्मणों की पूजा नहीं की इस कारण से, अथवा प्रातःकाल हम नींद से नहीं जागे शीघ्र आकर इन्हें नमस्कार ना कर सके इस कारण से क्या हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम रुष्ट हो गए हैं, अपना ही दोष सोच रहे हैं कि हमारे अंदर कुछ दोष है। तो तीनों भाई आपस में विचार कर रहे हैं कि हमारे किस दोष के कारण श्री राम रुष्ट हैं। इस प्रकार विचार करते हुए तीनों भाई श्री राम के समीप आए, उन्हें प्रणाम करके कहने लगे श्री राम हम लोग सदा आपके मन के अनुकूल ही चलते हैं, हमारे संपूर्ण कर्म आपको ही समर्पित हैं, आप हमारे मन में सदा निवास करते हैं, फिर आज आप हमारा अभिनंदन क्यों नहीं कर रहे हैं। तब भाइयों की बात सुनकर श्री राम धीरे धीरे बोले श्री राम रात्रि में दूत ने जो बातें कही थी उनका वर्णन करते हुए कहने लगे भाइयों जैसे पाखंडी लोग श्रुतियों पर दोष लगाते हैं उसी तरह लोग सीता की निंदा कर रहे हैं, इसलिए संसार के भय से भीत होकर ममता का परित्याग करने वाले योगी की भांति मैं लोकापवाद से डरकर सीता का त्याग करना चाहता हूँ। वज्रपात के समान श्री राम के उस वचन को सुनकर उन तीनों भाइयों के रोंगटे खड़े हो गए, ये कितना भयानक विचार है। तब उन भाइयों में से भरत जी आगे होकर श्री राम से कहने लगे श्री राम आपकी कृपालुता की तो बड़ी प्रशंसा हो रही है और आपका ये व्यवहार कितना कठोर, आपकी तो कृपा कितनी प्रशंसा हो रही है। अम्ब्रवीन भरतस्ते साम रघुनाथम विदम चहा कृपालु तुम राम चंद्र तो ये वे परिगीयते। भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो किसी कपिला गौ को बलपूर्वक म्लेच्छ के हाथ से छीन कर पुनः दूषित बताकर जंगल में त्याग देगा। यानी आपने क्या किया, म्लेच्छ के हाथ से कपिला गौ को तो छीन लिया, यानी रावण के हाथ से सीता को तो छीन लिया और अब आप उसको दूषित बता करके जंगल में त्याग रहे हैं। उसी तरह आप सीता को राक्षस के हाथ से छुड़ाकर पुनः त्याग देने की इच्छा कर रहे हैं। सीता जी अग्नि में प्रवेश करके अपने उत्तम शुद्धि का प्रमाण दे चुकी हैं। श्री राम पहले पिताजी ने जो कुछ कहा था क्या आप उसे भूल गए हैं। सुनिए बड़े ध्यान से भरत जी क्या कह रहे हैं कि पिताजी ने क्या कहा था। जिस समय अपनी ज्वालाओं से आकाश को चूमती हुई आग प्रज्वलित हो रही थी और सीता जी उसमें प्रवेश कर गई थी उस समय आकाश में विमान पर बैठे हुए पिता दशरथ ने आपके प्रति ऐसे शुभ वचन कहे थे। दशरथ जी तो शरीर छोड़ चुके हैं बहुत पहले, लेकिन उस समय सब देवताओं के साथ दशरथ जी भी आए थे विमान पर बैठे और आपसे पिता दशरथ ये बोले। दशरथ जी ने शरीर छोड़ा लेकिन अपनी पहचान के साथ में ही वो स्वर्ग में निवास करते हैं। क्या, मैं राम का पिता हूँ। तो उन्होंने जो है अपनी पहचान नहीं छोड़ी पिछले जन्म की। स्वर्ग में जाकर के भी उनको दिव्य शरीर प्राप्त हुआ, लेकिन पहचान उनकी वही है कि मैं राम का पिता हूँ। तो राम को अपना पुत्र कहते हुए बोले, बेटा इस प्रति परायणा सीता को तुम सर्वथा शुद्ध समझो, इसके चरित्र से हमारा सारा कुल पवित्र हो गया है। तो राम का कुल तो वैसे ही पवित्र है, सीता के कारण और ज्यादा पवित्र हो गया है। दशरथ जी कह रहे हैं, लोग पुत्र शोक के कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उत्तम गति नहीं प्राप्त होती है, परंतु सीता हमारी पुत्र वधु है इसलिए हमें स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ है। हरि बोल। जनक जी कह रहे हैं कि पुत्र के शोक में जो शरीर छोड़ते हैं उनको अच्छी गति नहीं मिलती है, मुझे अच्छी गति क्यों मिली, ये सीता के कारण। इस प्रकार पिता दशरथ के कहे हुए वचनों को क्या आप भूल गए। तो दशरथ जी ने आपको ऐसा कहा, भरत जी कह रहे हैं, तो भरत जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही तर्क है, लेकिन श्री राम का जो कारण है वो बहुत गहरा है, क्योंकि श्री राम स्थापना करना चाहते हैं क्या, विरक्ति की स्थापना करना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है गृहस्थ आश्रम में रहते हुए वो जो है गृह में ही ना बने कि पत्नी में आसक्त, इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हो। तो ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये तपस्या करने के लिए मिला है, विरक्ति का अभ्यास करें, इसलिए श्री राम इस शिक्षा को देने के लिए। तो भरत जी जब कहते हैं कि पिता ने स्वयं आपको ऐसा कहा, उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं ने जो कुछ कहा था उसका भी तो स्मरण कीजिए। अग्नि परीक्षा द्वारा शुद्ध हुई जानकी मनोहर माला से सुशोभित हुई, उस समय उन्हें बानरों ने भी देखा, इतने पर भी उनके प्रति आपका व्यवहार बहुत कठोर है। सीता के साथ आपका व्यवहार इतना कठोर कैसे है। गुम्फिता वानर दृष्टा माले वे रघुसत्तम तथापि ते मनोराम कठिनम परि लक्ष्यते। जब भरत जी ने ऐसी बातें कही तब श्री राम कहने लगे, प्यारे भाई तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, सीता सर्वथा शुद्ध है, परंतु इस लोकापवाद का रोका जाना तो बड़ा कठिन है। किसी के दिमाग में अगर एक बात आई कि श्री राम स्त्री लोभी हैं तो एक से दूसरे और दूसरे तीसरे अगर ना बोलें तो भी दिमाग में आएगी, तो ये विचार भी बहुत भयानक है और इसका परिणाम दूषित होगा, लोगों के मन दूषित हो जाएंगे। इसे श्री राम बहुत गहराई से विचार करते हैं, परंतु इस लोकापवाद का रोका जाना तो बड़ा कठिन है, ये राजाओं की कीर्ति का विनाश करने वाला है, जिनका जीवन कीर्तिहीन हो जाता है वे जीते हुए ही मृतक के समान। क्यों, क्योंकि राजा यद्यत आचरण श्रेष्ठ तत्देवे तरोजना, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करे सामान्य लोग वैसे आचरण करते हैं। और अगर कोई ये विचार आया किसी के मन में कि श्री राम में जो है स्त्री के प्रति आसक्ति है, स्त्री के प्रति लोभ है, तो ये विचार जो है उसी प्रकार का प्रजा में होगा और दूषित होगी, प्रजा दूषित होगी। श्री राम कह रहे हैं, पूर्णवा हरिश्चंद्र महुष और पृथु आदि जो श्रेष्ठ राजा हुए हैं उनके उत्तम यश का इस भूतल पर गान किया जाता है। मानधाता सगर अम्बरीश भगीरथ ऋतुपर्ण और नल ये अन्य और भी राजा हो चुके हैं, सभी उत्कृष्ट कीर्ति के कारण ही प्रसिद्ध हुए हैं। लोक में मनुष्यों के लिए सत्कीर्ति के समान पाप से रक्षा करने वाली उत्तम लोकों की प्राप्ति कराने वाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है, है ना। गीता का वही सिद्धांत है कि राजा की जो कीर्ति होती है तो उससे प्रजा भी पवित्र होती है। अगर राजा में कुछ दोष अगर मिला तो प्रजा क्या होगी, दूषित हो जाएगी, है ना। इसलिए अपनी कीर्ति की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। तो श्री राम कह रहे हैं, इस संसार में शुद्ध कर्म करता हुआ मनुष्य यदि दो घड़ी तक जीवित रहे तो उसका जीवन श्रेष्ठ है, परंतु कीर्तिहीन होकर युग पर्यंत जीवित रहना उत्तम नहीं है। क्या कौवे और उल्लू चिरकाल तक जीवित नहीं रहते हैं। इससे पता चलता है कि कौवे और उल्लू बहुत जीवित रहते हैं, किसी दुर्घटना में जब मृत्यु हो तो मरते नहीं, तो वैसे मरते ही नहीं। कीर्तिहीन मनुष्य का जीवन भी उसी तरह व्यर्थ है। जिन स्त्री पुत्र और भाई बंधुओं से मनुष्य को अपयश का भागी होना पड़े, वे प्राणों के समान प्यारे हों तो भी उनका परित्याग कर देना चाहिए। पूर्व काल में सत्यवादी राजा शिवि ने कीर्ति के लिए अपने शरीर का मांस काटकर बाज रूपधारी इंद्र को समर्पित कर दिया था। उसी तरह कर्ण ने भी अपना कवच इंद्र को दान कर दिया और जीमूतवाहन ने अपना जीवन गरुड़ को अर्पित कर दिया। उत्तम कीर्ति का संपादन करने वाले महर्षि दधीचि ने कीर्ति की कामना से अपनी हड्डियां तक दान कर दी, इसलिए मैं कैंचुल को त्याग करने वाले सर्प की भांति सीता का परित्याग कर दूंगा। भरत, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो मेरे विषय में तुम्हें पुनः ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। ये सुनकर लक्ष्मण जी हाथ से हाथ को मलते हुए सर्प की भांति श्वास छोड़ने लगे, नेत्रों से दुख के गरम गरम आंसू बहाते अपने हाथों को हिलाते हुए बोले। लक्ष्मण जी ने कहा, हाय रघुनंदन, लोग अपवाद के कारण क्या सीता का परित्याग करना उचित है? क्या कोई पत्नी के कलह करने से अपनी माता को त्यागता है? पत्नी अगर नाराज हो तो क्या कोई माता का त्याग करेगा? उसी प्रकार से दुष्ट धोबी है, अगर कुछ बोल रहा है तो क्या सीता का परित्याग करना चाहिए? कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। उसी तरह आप भी संपूर्ण लोगों की माता सीता का परित्याग करना चाहते हैं। जो सीता पर दोष लगा रहे हैं मैं उन समस्त पापियों का वध कर डालूंगा। बिल्कुल सही है, लक्ष्मण जी कह रहे हैं वो भी सही है, लेकिन राम जो सोच रहे हैं वो तो बहुत ही गहरी बात है। तथा तुम सर्वलोकस्य जननी मातुमिच्छसि पापिनस्तान हनिष्यामि ये सीताम दोषयन्ति हि। श्री राम, इस पर आप ही विचार कीजिए कि म्लेच्छों द्वारा पूजित अर्धमुंडित यवन यदि श्रुति को दोषित बताते हैं तो क्या ब्राह्मणों को श्रुति का परित्याग कर देना चाहिए? हैं, जो म्लेच्छ लोग हैं अगर वेदों को दोषित बताते हैं तो ब्राह्मण क्या वेदों का त्याग कर देगा? हैं, शत्रुघ्न जी भी श्री राम से बोले, श्री राम आप जो ये कह रहे हैं कि मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, सो यदि वास्तव में आप प्राण त्याग कर देंगे तो अमर हो जाएंगे, क्योंकि अब तक जितने लोग आपके हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उन्हें अमरत्व की प्राप्ति हो गई है। जो पाप होने वाले जीव आपके शरण ग्रहण करते हैं वे भी दुख रहित और निरोग हो जाते हैं, तब सीता के विषय में क्या कहना है? अथवा यदि आप मर ही जाएं तो पति की लालसा वाले सीता जी आपको पुनः जीवित कर सकती हैं, परंतु सीता के मरने पर आप उन्हें कैसे जला सकेंगे? शत्रुघ्न जी की ये बात सुनकर श्री राम धीरे धीरे बोले। श्री राम ने कहा, भाई मैं लोग अपवाद के डर से भयभीत होकर अपने को तथा तुम सभी भाइयों का भी त्याग कर सकता हूँ। फिर सीता की दो बात ही क्या है, है ना? धर्म की स्थापना करने के लिए, प्रजा को धर्म में लगाने के लिए अगर कुछ कारण बने अपना भी त्याग कर दूँ, आप सब भाइयों का भी त्याग कर दूँ, कितने मतलब ऊंचे विचार हैं, कितना त्याग है, कितना बड़ा त्याग है। आत्मानम अप्यहम दह्याम युष्मान चा पुरुष अपवाद भया धीता किम पुनर्जनक आत्मजाम। तब सीता का परित्याग करने के लिए उद्यत हुए श्री राम के ऐसा कहने पर भरत शत्रुघ्न अपने अपने महल को चले गए, परंतु लक्ष्मण दुख में भटकते हुए राम को एक आगे छोड़कर ना जा सके। उस समय लक्ष्मण को अकेले देखकर श्री राम कहने लगे, सुनने सब लोग ध्यान से, भरत शत्रुघ्न तो चले गए अपने अपने महल में, लेकिन लक्ष्मण श्री राम को छोड़ के नहीं जा सकते हैं और राम जो है बहुत चिंता में है। लक्ष्मणो न यो रामम त्यक्त्वा दुःखाटवेगतम लक्ष्मणम केवलम दृष्ट्वा रामो वाक्यम अथा ब्रवीत। तो श्री राम अब लक्ष्मण से बोले, क्या बोले आप लोग सुन रहे ध्यान से, सुमित्र नंदन यादव तुम बिना कोई अन्यथा विचार किए तलवार से मेरा सिर काट डालो। अब दो कार्य करना है आपको, मेरी आज्ञा है। पहला कार्य है या तो ये करो तलवार से मेरा सिर काट डालो अथवा सीता को गंगा तट पर छोड़ आने के लिए जाओ, बस अब देर मत करो। कितनी भयानक बात है। सौमित्र छिंद खट गए सिरो में ना विचार है सीताम भागरी भागीरथी तेरे त्यक तुम गच्छ माचरम। सीता के परित्याग के दोष का भाग्य मैं होऊंगा, तुम्हें इसका दोष नहीं लगेगा। क्या कह रहे हैं श्री राम लक्ष्मण से, क्या कह रहे हैं? सीता को त्याग करने का दोष मुझे लगेगा तुम्हें नहीं लगेगा, मेरी आज्ञा से तुम जाओ, तुम्हें आज्ञा पालन करने का पुण्य प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे चरणों में नमस्कार करता हूँ, तुम सीता को गंगा तट पर छोड़ आओ। सीता पर त्याग भवो दोषो, सीता पर त्याग भवो दोषो ममतवास्तु ना नौमिते चरणों भ्राता सीताम मुंचे सरित तटे। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण जी लज्जा से झुक गए, बहुत भयभीत हो गए लक्ष्मण जी। वे लंबी सांस लेने लगे, उनका चित्त संशय छन्न हो गया, अतः मन में विचारने लगे। अब लक्ष्मण जी क्या विचार कर रहे हैं, सुने आप लोग। धर्म शास्त्रों में सुना जाता है कि गुरुजनों की आज्ञा भी गुरुतर होती है, इसीलिए पूर्व काल में परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा मानकर शीघ्र ही अपनी माता का सिर काट दिया था। इस प्रकार श्री राम की आज्ञा का पालन करने के लिए अपने में मन में दृढ़ निश्चय करके लक्ष्मण ने अपने सारथी से कहा, सूत घोड़े जोत कर रथ ले आओ। तब सारथी ने वो उत्तम रथ लाकर उपस्थित किया और लक्ष्मण जी उस पर सवार होकर सीता जी के महल की ओर चल दिए। अब देखिए कैसे घटना का योग कैसा है कि सीता जी ने रात में इच्छा की थी कि मैं गंगा के तट पर ऋषि मुनियों के आश्रम में दर्शन करूंगी और उनकी पत्नियों का दर्शन करूंगी, और उसी प्रकार का योग वो बन गया, कारण और भी बन गए। लेकिन सीता जी को तो वापस आना था, उनकी इच्छा थी कि मैं दर्शन करके वापस आऊं, लेकिन अभी ऐसी घटना हो गई कि अब उनको वापस नहीं लाया जाएगा। अंतर ये है, तब सारथी ने वो उत्तम रथ लाकर उपस्थित किया और लक्ष्मण जी उस पर सवार होकर सीता जी के महल की ओर चल पड़े। मार्ग में घोड़े पृथ्वी पर गिर पड़े, क्योंकि घोड़ों को भी पता है, कि किस कार्य के लिए जा रहे हैं, इसलिए वे भी गिर पड़े। सारथी के चाबुक की मार से पीड़ित होकर उठे और धीरे धीरे चलने लगे। सीता जी के महल के निकट पहुंचकर लक्ष्मण जी रथ से उतर पड़े और भवन के भीतर प्रवेश करके नीचे मुख किए उन्होंने सीता जी को प्रणाम किया। अब लक्ष्मण जी जानते हैं कि वे क्या करने जा रहे हैं और सीता जी कुछ पता नहीं है, तो वे तो बहुत दुखी हैं, सिर ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं। प्रणाम किया सीता को। इस प्रकार लक्ष्मण को आया देखकर सीता जी कहने लगी, मेरे स्वामी सदा मेरा मनोरथ पूर्ण करते रहते हैं, रात के समय मैंने हंसी हंसी में उनसे जो याचना की श्री राम ने उसे पूर्ण करने की स्वीकृति दे दी, परंतु देवर जब तक तुम मुझे नहीं दिख पड़े तब तक मैं उनकी स्वीकृति देने पर भी निष्फल ही समझती थी कि शायद ये इच्छा पूरी नहीं करेंगे। तो सीता जी नहीं जानती हैं कि उनके ऊपर कितना बड़ा संकट आने वाला है। इस समय जब तुम श्री राम के उस कथन को सत्य करने के लिए आ गए हो, तब मैं अपने कल्याण की के लिए वहाँ रहने वाले मुनियों और मुनि पत्नियों को देने के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र अगुरु और चंदन ले चलूंगी। गृहीष्यामि विचित्राणि वासांस गुरु चंदनम मुनिभ्यो मुनि पत्नीभ्यो दातुम श्रेयोभिवृद्धये। सीता जी के उस वचन को सुनकर लक्ष्मण जी के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई, परंतु उस समय भाई के वचन के बंधन से बंधे होने के कारण परवश थे, अतः आंसू बहाते हुए धीरे से बोले, ऐसा ही कीजिए। तब सीता जी ने उस रथ पर श्री राम की मणि जटित सोने की खड़ाऊं रख ली। कहीं भी जाएंगे सीता जी, कितना उनका जो है सेवा की भावना है श्री राम के प्रति, खड़ाऊं को अपने साथ में रख करके जा रहे हैं। श्री राम साथ में नहीं है तो श्री राम की खड़ाऊं अपने साथ में रख लें और रेशमी वस्त्र, सुंदर मृग चर्म, अनेक प्रकार के भोजन की वस्तुएं रखी। इस तरह सारी उपयोगी वस्तुएं रखकर वे सांस से आज्ञा लेने के लिए चली। वहां पहुंचकर सीता जी कौशल्या जी के चरणों में प्रणाम करके बोली, माता इस गर्भ काल में गंगा जी के तट पर जाकर आनंद पूर्वक विचरण करने के लिए मेरे मन में इच्छा जागृत हुई और उसे पूर्ण करने के लिए मेरे देवर लक्ष्मण तैयार होकर आ गए। अब यदि आपकी आज्ञा मिले तो मैं इस वन में जाना चाहती हूँ। सीता जी की बात सुनकर कौशल्या जी ने उनसे कहा, कौशल्या जी बोली, सीते तू चिरकाल तक कष्ट भोगने के पश्चात प्राप्त हुए राज्य सुख का परित्याग करके क्यों वन में जाना चाहती है। कौशल्या जी को भी ये 10,000 साल ऐसे लगे जैसे कुछ हुए ही नहीं, इतनी जल्दी बीत गए, और 14 साल का जो वनवास है उसको कह रहे हैं चिरकाल तक तूने कष्ट भोगा है। 10,000 साल बीत गए हैं सुख के, तो पता नहीं चला कैसे बीत गए। तो कौशल्य जी कहते हैं कि अभी तू राज सुख का प्रत्याग करके क्यों जाना चाहती है जंगल, चर काल तक तो तूने जंगल का कष्ट भोगा है। ये आश्चर्य। वो वन तो वृक्ष और कांटों से भरा हुआ है। सुअर, व्याघ्र, सिंह आदि हिंसक जंतुओं से व्याप्त होने के कारण बड़ा भयावना है। उसमें सर्दी, गर्मी, आंधी, वर्षा का कठिन दुख सहना पड़ता है। तो जिस वन में जाने के लिए तैयार है, उसका सेवन तो कठोर हृदय वाले मनुष्य ही कर सकते हैं। अतः श्री राम को छोड़कर तेरा वन में जाना उचित नहीं है। वहाँ प्रातःकाल तेरा मुख मलिन हो जाएगा, ओठ सूख जाएंगे। कौन कह रहे हैं? कौशल्या जी कह रहे हैं। सीता जी ने कहा, सास जी, मेरे पतिदेव वन में निवास कर चुके हैं। वे वहाँ सारा कांटों का मर्दन, वहाँ वे सदा कांटों का मर्दन किया करते थे, हाँ, इसलिए मुझे कंटकों से कष्ट नहीं होगा। जिन निर्मल श्री राम ने रण क्षेत्र में करोड़ों मरे हुए वानरों को जीवित कर दिया था, मुझे उनका स्मरण करते हुए जानकर वन मेरे लिए कष्टदायक नहीं होगा। जब मैं राम नाम का जप करती रहूंगी, तब मेरे ओठ सूख कैसे जाएंगे? ओठों में राम नाम रहेगा तो ओठ कैसे सूखेंगे? माता, मैंने मन वचन और क्रिया द्वारा आपकी सेवा की है, उसके फलस्वरूप मुझे मन में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होगी। मैं आपके पैरों पड़ती हूँ। ऐसा कहकर सीता ने अपनी सास कौशल्या जी की प्रदक्षिणा की, फिर कैकेयी और सुमित्रा के चरणों में नमस्कार किया। तब उनकी अनुमति लेकर सीता जी लक्ष्मण जी जहाँ रथ लेकर खड़े थे वहाँ जा पहुँची और हर्षपूर्ण मन से उस रथ पर जा बैठी। तब रुने हुए कंठ से लक्ष्मण जी ने सारथी से कहा, सूत, चाबुक मारकर घोड़ों को हाँको, जिससे शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़े। लक्ष्मण जी की वो बात सुनकर सारथी उनसे कहने लगा कि हे देव, मुझे इन घोड़ों की मनोदशा का पूर्ण ज्ञान है। ये घोड़े अपने नथुनों को हिलाकर कहना चाहते हैं, एक तो ये पृथ्वी पहले ही सीता के दुख से विशेष दुखी है। घोड़े जो है, जब सारथी कह रहा है चलो आगे, तो घोड़े ऐसे कर रहे हैं, तो ये बताना चाहते हैं। सारथी लक्ष्मण से बोला, ये बताना चाहते हैं घोड़े कि एक तो पृथ्वी पहले से सीता के दुख से विशेष दुखी है, दूसरे समय यदि हम लोग वेग पूर्वक चलेंगे तो हमारे टापों के आघात से और भी पीड़ित होगी। हम सीता को वन में छोड़ने जा रहे हैं तो पृथ्वी को और भी कष्ट होगा हमारे कारण। तो घोड़े ऐसा कह रहे हैं, हमारी चाल की प्रशंसा तो संग्राम भूमि में होती है, ऐसे मार्ग में चलने में नहीं है। घोड़े कहते हैं, युद्ध के रास्ते में हम चलेंगे तो हमारी प्रशंसा होगी, ये तो हमारे लिए बड़ी निंदा की बात है हम ऐसे रास्ते में जाएं। घोड़े अपने हृदय में ऐसा ही समझ रहे हैं, तो भी मैं अभी इन्हें आगे बढ़ाता हूँ, आप मेरे हाथ की फुर्ती देखिए। ऐसी बात कहकर सारथी ने अपने हाथों की हथेलियों से घोड़ों की गर्दन को थपथपाया और बागडोर हाथ में लेकर चाबुक को लपलपाते हुए घोड़ों को वेगपूर्वक आगे बढ़ाया। तो यहाँ पर विश्राम देंगे इस कथा को, लेकिन आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है, जरूर हम चाहेंगे इस विषय में कुछ चर्चा करना। तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? आपका बोलिए। हैंड माइक चालू है। हरि बोल।
और आपने बताया कि कृष्ण लीला में जो है ये जाना माता या तो बारूढ़िया रेणु में से कोई एक थी,
हाँ,
तो अनंत मंजरी। और
हाँ, इनका अच्छा प्रश्न है कि जाहनवा माता जो है बलदेव जी की पत्नी है, है ना, और साथ साथ ये भी बताया गया कि ये कृष्णलीला में अनंग मंजरी, हाँ, तो एक शरीर में दो आत्माएं हो सकती हैं। जब किसी के शरीर में प्रेत आ जाता है तो बड़ी असुविधा होती है, क्योंकि वो अपने अपने तरीके से शरीर को भोगना चाहते हैं, तो असुविधा होती है। लेकिन जब ऐसे भगवान की शक्ति हैं, अगर वो जो है दो देवियाँ एक शरीर में आ जाएं, तो कोई असुविधा नहीं होती है, क्योंकि उसी प्रकार की चेष्टाएँ होती हैं। तो एक शरीर में दो देवियाँ आ सकती हैं, ठीक है। भक्तमाल नाभादास के द्वारा लिखा गया है भक्तमाल, तो हमारे लिए कुछ ऐसा पाठ्य ग्रंथ नहीं है, लेकिन उसमें जो कवित्व था वो उसमें लिखा था, तो मैंने पढ़ के सुना दिया, ठीक है। आप नहीं, नहीं, आप इनको दीजिए।
तो मैं जहनवा माता से संबंधित एक आश्चर्य में बात बताऊंगा। जो कि हमारे प्रभु जी के प्रवचन में एक विधि अवसर 2 साल को प्रभु जी गोविंद कुंड में गए थे। आवाज आ रही है मेरे साथ?
अरे
गोविंद कुंड में गए थे और उसके पश्चात फिर झानवा घाट पे भी गए। आपने देखा होगा कि राधा कुंड में एक स्पेशल घाट झानवा माता के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि उन्हीं के स्नान करने के लिए जगह है। तो जब हम गोविंद कुंड का दर्शन करने कथा करने के बाद प्रभु जी अपनी गाड़ी में बैठ के और हम भी प्रभु जी के साथ थे, तो जब राधा कुंड में पहुंचे झानवा देवी के घाट के पास, तो उसी वक्त प्रभु जी के प्रवचन का एक पेनड्राइव था और प्रवचन तो दिल्ली से ही चलते जा रहे थे उसमें, पर उस वक्त यही प्रार्थना निकली श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी की, जो कि प्रभु जी ने झानवा माता के प्रति की गई प्रार्थना बताई। तो बहुत ही आश्चर्यमय घटना है और ऐसी घटना प्रभु जी के प्रवचन में पिछले साल 2015 में 1000 घटना हुई।
श्रीमती सीता महारानी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रीमती जाह्नवा देवी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्री मधु पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्री चंदन यात्रा महामहोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरी।